नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार दो चरणों में कराएगी जाति गणना के साथ जनगणना 2027। पहले चरण की अधिसूचना 16 जून को जारी हो सकती है। राज्य के निबंधित कारखानों में अब महिला कामगार सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक काम कर सकेंगी। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आम लोगों से अपने परिसरों और आसपास पौधा लगाने की अपील की। और मौसम विभाग ने आज किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 को दो चरणों में कराने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही जाति गणना भी की जाएगी। जनगणना के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 होगी। गृह मंत्रालय ने कहा है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026 होगी। एक रिपोर्ट।
जनगणना से संबंधित अधिसूचना इस महीने की 16 तारीख को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की संभावना है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इससे पहले यह जनगणना 2021 में दो चरणों में आयोजित होनी थी, लेकिन देशभर में कोविड महामारी के प्रकोप के कारण जनगणना का काम स्थगित करना पड़ा था। भारतीय जनगणना की यह प्रक्रिया दुनिया की सबसे बड़ी प्रशासनिक और सांख्यिकीय प्रक्रिया में से एक है। इस जनगणना के जरिए देश की आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिति की बेहतर जानकारी सामने आएगी। इस जानकारी के आधार पर सरकार को लोगों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए बेहतर नीति बनाने में मदद मिलेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
राज्य के निबंधित कारखानों में अब महिला कामगार सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक काम कर सकेंगी। हालांकि रात 10 बजे तक काम करने के लिए महिला की लिखित सहमति लेना अनिवार्य होगा। श्रम संसाधन विभाग ने इस संबंध में जारी अधिसूचना में कहा है कि नियोजित महिला कामगारों को लोकहित में यह छूट दी गई है। हालांकि यह प्रावधान बाध्यकारी नहीं होगा। जो महिलाएं रात 10 बजे तक काम करेंगी, उन्हें कारखाना लाने और ले जाने के लिए कारखाना प्रबंधन को परिवहन की सुविधा उपलब्ध करानी होगी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बिहार में 48,95,000 आवास बांटे गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016-17 से 2025-26 तक के लिए इन आवासों की स्वीकृति दी गई है। ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि अब नए सिरे से सर्वे कराए गए हैं। इसके तहत योग्य लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ मिलेगा। अब तक 37 लाख घर बनकर तैयार हैं। इनमें 39 लाख लाभुकों को तीसरी किस्त की राशि दी गई है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने कहा है कि जमीन से जुड़ी समस्याओं का निपटारा अब पंचायतों में ही होगा। विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि राजस्व कर्मियों को अनिवार्य रूप से पंचायत सरकार भवन में ही रहना होगा। उन्होंने कहा कि अगर पंचायत सरकार भवन नहीं है तो जहां भी पंचायत कार्यालय चल रहा है, कर्मियों को वहीं अपना कार्यालय रखना होगा। कर्मचारी संघ और सरकार से वार्ता के बाद राजस्व विभाग ने पत्र जारी कर यह निर्देश दिए हैं। मुजफ्फरपुर दुष्कर्म पीड़िता की मौत के बाद राज्य सरकार की ओर से उसके परिवार को आर्थिक सहायता दी जा रही है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि मृतका के परिवार को पहली किस्त के रूप में 4,12,650 रुपए की राशि खाते में भेजी गई है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन की ओर से परिवार को प्रति माह 7,750 रुपए की पेंशन की स्वीकृति दी गई है। चुनाव आयोग मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चला रहा है। इसके अंतर्गत बूथ लेवल अधिकारी BLO घर घर जाकर 17 वर्ष से अधिक उम्र के युवाओं का नाम मतदाता सूची में शामिल कराएंगे। आयोग के निर्देश पर योग्य युवाओं से फॉर्म 6 भरवाया जाएगा। गौरतलब है कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के निर्देश पर 1200 वोटरों पर एक बूथ का गठन होना है। इधर प्रदेश के 6 नगर निकायों पटना, बोधगया, पूर्वी चंपारण, रोहतास, बक्सर और बांका में उपचुनाव के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन है। इन निकायों में 28 जून को मतदान होगा, जबकि मतगणना 30 जून को होगी। देश भर के 30,000 से ज्यादा संगठनों ने इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर होने वाले मुख्य कार्यक्रम योग संगम 2025 में भाग लेने के लिए पंजीकरण कराया है। इस वर्ष योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लद्दाख की शांत चोटियों से लेकर केरल के जीवंत समुद्र तटों, स्कूल के मैदानों से लेकर कॉरपोरेट परिसरों और ऐतिहासिक मंदिर प्रांगणों, व्यस्त रेलवे स्टेशनों तक विविध स्थानों पर योग सत्र आयोजित किए जाएंगे। भारतीय रेलवे ने अनाधिकृत बुकिंग के लिए 2.5 करोड़ संदिग्ध उपयोगकर्ता आईडी को निष्क्रिय कर दिया है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि नई आधुनिक तकनीक के माध्यम से एजेंटों के अनाधिकृत स्वचालित बुकिंग पर बहुत हद तक अंकुश लगाया गया है। इधर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि तत्काल टिकट बुक करने के लिए शीघ्र ही ई आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करना शुरू किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे वास्तविक उपयोगकर्ताओं को जरूरत के समय कन्फर्म टिकट लेने में सहायता मिलेगी। भारत में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर एक दशक में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। आकाशवाणी समाचार आपके लिए पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष फीचर लेकर आया है। आज हम शिक्षा और खेल पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो भारत की अमृत पीढ़ी, युवा पीढ़ी को सशक्त बनाने की कुंजी है।
सरकार शिक्षा और खेल के माध्यम से युवाओं के भविष्य के सपनों की नींव रख रही है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने समग्र और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक देश भर के स्कूलों में प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% और वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा में 50% नामांकन किए जाए। वर्ष 2014 में देश के उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या 51,000 थी, जो अब बढ़कर 70,000 से अधिक हो गई है। इसमें IIT, IIM और एम्स जैसे शिक्षण संस्थान की संख्या अधिक है। PM श्री योजना के तहत देश भर में 14,500 स्कूलों का कायाकल्प किया जा रहा है। शिक्षा के साथ साथ खेल क्षेत्र भी सरकार की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में है। खेलो इंडिया अभियान के तहत देश भर में 1,000 से अधिक प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं और 3,000 युवा खिलाड़ियों को सालाना 6 लाख रुपए से अधिक की मदद दी जा रही है। टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के तहत देश के शीर्ष खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान किए जा रहे हैं। भारत ने पिछले 2 ओलंपिक में 13 पदक जीते हैं और पेरिस पैरालंपिक में रिकॉर्ड तोड़ 29 पदक अपने नाम किए हैं। भारत अपने युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ उन्हें बड़े सपने देखना, तेज दौड़ना और कभी न रुकना भी सिखा रहा है। रईसुद्दीन रिहान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। मौसम विभाग ने आज किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार औरंगाबाद, कैमूर, गया और नवादा में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी आशंका है।
दिनांक 5 जून 2025 को राज्य के उत्तर पूर्व भागों के एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है।
मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 4 दिनों तक प्रदेश के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। प्रदेश में बाढ़ सुरक्षा और तटवर्ती क्षेत्रों की रक्षा के लिए बेगूसराय और पटना जिला के लिए 116 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। जल संसाधन विभाग ने इन दोनों जिलों के लिए प्राथमिकता के आधार पर समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। प्रदेश में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पटना में पिछले 24 घंटों के दौरान 3 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। पटना के सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि जिले में अभी तक 22 सक्रिय मरीज हैं। राज्य के सभी बीएड महाविद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसाओं को लागू करना अनिवार्य कर दिया गया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने इस संबंध में राज्य सरकार को पत्र निर्गत किया है। पत्र में कहा गया है कि नए प्रावधानों के तहत शिक्षक शिक्षा संस्थानों का प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन भी अनिवार्य होगा। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। प्रकृति और पृथ्वी के संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का विषय है प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना। इस अवसर पर देश और प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत नई दिल्ली के भगवान महावीर वनस्थली पार्क में विशेष पौधारोपण अभियान का नेतृत्व करेंगे। इधर राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पौधारोपण करेंगे। मुख्यमंत्री ने सभी आमजनों से अपने परिसरों और आसपास पौधा लगाकर स्वच्छ पर्यावरण के निर्माण में योगदान की अपील की है। आज गंगा दशहरा है। मान्यता है कि आज ही के दिन गंगा नदी का धरती पर अवतरण हुआ था। इस दिन स्नान और दान का विशेष महत्व माना गया है। इस अवसर पर सुबह से श्रद्धालु पटना सहित राज्य के विभिन्न गंगा घाटों पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और उनकी सुविधा के लिए घाटों पर विशेष प्रबंध किए गए हैं। इधर पटना जिला प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए आज और कल गंगा नदी में नावों के परिचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसर के प्रथम तल पर आज राजा राम और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। आज संपूर्ण क्रांति दिवस है। आज ही के दिन महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। इस अवसर पर राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पटना के जेपी गोलंबर पर आयोजित मुख्य राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। फ्रेंच बॉक्सिंग विश्व कप में भाग लेने वाली भारतीय टीम में बिहार के 3 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। और अब जिलों से प्राप्त संक्षिप्त समाचार। निगरानी की टीम ने कैमूर जिले के भगवानपुर थाने में पदस्थापित 2 दारोगा को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है केंद्र सरकार का ऐलान, देश भर में 16वीं जनगणना का काम मार्च 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। दैनिक भास्कर ने लिखा है बेंगलुरु में आरसीबी की जीत के जश्न के बीच भगदड़, 11 लोगों की मौत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार 2 चरणों में कराएगी जाति गणना के साथ जनगणना 2027। पहले चरण की अधिसूचना 16 जून को जारी हो सकती है। राज्य के निबंधित कारखानों में अब महिला कामगार सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक काम कर सकेंगी। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आम लोगों से अपने परिसरों और आसपास पौधा लगाने की अपील की। और मौसम विभाग ने आज किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।